नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आईएएस कोचिंग हादसे के मामले में 5 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित आज राउस एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सबुजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के कांस्य पदक फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग ले रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा है कि यह आसान समय नहीं है, यह एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त करना भी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी पर जोर देते हैं, उसी तरह लचीलेपन के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भी असाधारण अनुपात हासिल कर लिया है, जिससे लोगों के जीने, सोचने और कार्य करने के तरीके में संभावनाएं पैदा हो रही है। एक तरह से दुनिया पुनः वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा है कि यह केवल सामूहिक प्रयास ही है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानव निर्मित या प्राकृतिक व्यवधानों से बचा सकते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रों के पास महत्वपूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। राजनीतिक लोकतंत्रों, बहुलावादी समाजों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि यह केवल क्वाड का सहयोग है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंडो पैसिफिक स्वतंत्र, खुला, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। विदेश मंत्री ने कहा, सदस्य देशों ने वैश्विक भलाई करने की जो प्रतिबद्धता जताई है, उनकी गूंज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक है। उन्होंने आगे कहा है कि आवश्यक है कि राजनीतिक समझ मजबूत हो और आर्थिक साझेदारी बढ़े, प्रौद्योगिकी सहयोग को विस्तार हो और लोगों के बीच सहजता बढ़े। डॉ जयशंकर ने बैठक से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए ऐसा कहते हुए कहा कि क्वाड यहां रहने के लिए, यहां करने के लिए और यहां पढ़ने के लिए बनी हुई है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में आखिरी बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और भारत प्रशांत क्षेत्र में विकास पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और क्वाड पहल और कार्य समूहों पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी के माध्यम से क्षेत्र में समकालीन प्राथमिकताओं को संबोधित करके एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भविष्य के सहयोग का मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले आज डॉ जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वॉन्ग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में कल आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका विषय है जर्नी टुवार्ड्स विकसित भारत। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। सम्मेलन में अन्य लोगों के अलावा उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और विशेषज्ञ समुदाय सहित 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे और देश और विदेश के विभिन्न सीआईआई केंद्रों से कई लोग जुड़ेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है और वर्तमान सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम हो कर 3.2% हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर 3% से नीचे आ जाएगी। आम बजट की सराहना करते हुए डॉ मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पैकेज से 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान होंगे। उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डॉ मांडविया ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा है कि श्रम बल भागीदारी दर 44% और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40% तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएएस कोचिंग हादसे के मामले में 5 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा है कि जांच सभी दृष्टिकोण से चल रही है। उन्होंने कहा है कि बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधि करने की कोई अनुमति नहीं थी। पुलिस ने नगर निगम से कुछ जानकारी मांगी है, साथ ही उनकी भूमिका भी जांच करेंगी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और करोल बाग जोन के एक सहायक इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली के कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा है कि ऐसी घटना में कितनी भी मुआवजा दिया जाए वो कम है। उन्होंने कहा है कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया है। श्री थरूर ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए अनुपातित प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। राज्यसभा में भी इसी घटना पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए मामले की विस्तृत जांच करने और इसके के लिए जिम्मेदार तय करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भवन के नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताए जाने के बावजूद निकासी प्रणाली को स्वच्छ और सुचारू बनाने का कोई कदम नहीं उठाया गया था। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर ने इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों को और दाखिले में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउस एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज संबंधित धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व वाणिज्य कोष के अनुसार भारत में बाघों की आबादी वर्तमान में स्थिर है और बढ़ रही है। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए थे। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विश्व के 80% बाघ भारत में मौजूद है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 2031 तक देश पर शासन करेंगे। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सर्बजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे उनका सामना दक्षिण कोरिया की ओह ये जीन और ली वान हो से होगा। ओहयेजिन के व्यक्तिगत प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत तथा जिसमें भाकर ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में अर्जुन चीमा और रिदम सांबम भी भारतीय जोड़ी में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।